ते वासुदेवाया
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
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 ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपा सागरजाता सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणलता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है इस वर्ष के हमारे ग्रेप फेस्टिवल में। सबसे पहले हम देवदर्शन प्रभु और उनके परिवार को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिनके वजह से हम दर्शन कर पाते हैं हर वर्ष इस सुंदर फेस्टिवल का। रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहे हैं, अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम्। एक साधक को ढूंढते रहना चाहिए कौन सी अनुकूल स्थिति है भक्ति में प्रगति करने की, और प्रतिकूल्य से वर्जनम, और कौन सी प्रतिकूल स्थिति आ सकती है जिससे वर्जित रहना है। अब जैसे हम हर वर्ष यहां पर आते हैं तो हम इस जगह को हमारी भक्ति के अनुकूल बनाते हैं। जैसे यहां बहुत से व्यवस्थाएं की जाती है, ये पंडाल लगाया जाता है, प्रसाद बनाया जाता है, हम सब व्यवस्था करते हैं अपने अपने घरों से मंदिरों से आने के लिए यहां पर वाहनों में। तो रूप गोस्वामी जो कहते हैं हम चेष्टा कर रहे हैं उसको पालन करने का कि हम अनुकूल स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं यहां पर। अब देखिए यही पंडाल, इसमें हम प्रतिकूल स्थिति भी उत्पन्न कर सकते हैं, हमारी भक्ति के प्रतिकूल स्थिति भी उत्पन्न कर सकते हैं। यहां पर व्यवस्था की गई है सत्संग की, और यही व्यवस्था, ये व्यवस्था क्या है, इस भौतिक संसार की जितनी सुविधाएं हैं, कोई पंडाल वाला लाकर लगा कर गया होगा ये। अब ये पंडाल नासिक में या इस क्षेत्र में कितने वर्षों से कहां कहां नहीं लगाया गया होगा, और इस पंडाल में पता नहीं क्या कुछ नहीं हुआ होगा। क्या हर वर्ष एक ही व्यक्ति है जो लगाता है ये पंडाल, कि अलग अलग व्यक्ति होते, अलग अलग। तो देखिए देवदर्शन प्रभु सुकृति दे रहे हैं पंडाल वाले को कि अन्यथा ये पंडाल में यदि और कहीं पर वो लगाता तो हो सकता है भक्ति के प्रतिकूल कार्य होता उसमें। तो रूप गोस्वामी जब ये आदेश दिए हैं कि हमें इस भौतिक संसार की जो परिस्थितियां हैं उसको हमारी भक्ति के अनुकूल बनाना है, जैसे हम यहां पर कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं इस परिस्थिति को हमारे भक्ति के अनुकूल बनाने। अब रूप गोस्वामी तो कहे कि अनुकूल हमें बनाना है हर परिस्थिति को, परंतु भागवत में और भगवान श्री कृष्ण गीता में इस भौतिक संसार की स्थिति के बारे में क्या कहे हैं। भगवान कहे हैं दुखालय है और अशाश्वत है, और भागवत में क्या कहा है, ब्रह्मा जी जो कि इस सृष्टि के रचयिता हैं, दशम स्कंद में ब्रह्मा जी कहते हैं समाश्रित ये पाद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारी भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। जो रचयिता हैं इस सृष्टि के वो कहे हैं कि हर पग पर यहां पर विपदा, विपदा का अर्थ है प्रतिकूल स्थिति। तो रूप गोस्वामी ने जो प्रोजेक्ट दिया है हमें अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, वो इस कलयुग के लिए, जिसके विषय में बताया गया है कि हर एक पद पर विपदा है या प्रतिकूल स्थिति है। तो रूप गोस्वामी के अनुसार अनुकूल स्थिति को अपनाना है, प्रतिकूल स्थिति को छोड़ना। परंतु यदि हम देखें इस भौतिक संसार में तो सारी स्थिति प्रतिकूल है, हमारे शरीर मन से शुरू करें सब कुछ प्रतिकूल है। क्या ये शरीर अनुकूल है हमारी भक्ति के, विशेष रूप से कलयुग में कितनी सारी बाधाएं ये शरीर और मन द्वारा हमें हमारी भक्ति में आती है, आलस्य विक्षेप औदासीन्य, ये सब कुछ बताए हमारे आचार्य बताए हैं, ये सारे शरीर से संबंधित, स्थूल और सूक्ष्म शरीर से संबंधित, और बाकी परिस्थितियां बाहर की परिस्थितियां अधिभौतिक अधिदैविकता जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सारे, और एडिशंस चार ताप बोनस। तो रूप गोस्वामी हमें जब कहते हैं कि हमें अनुकूल स्थिति को ढूंढना है, तो हम यदि जाके रूप गोस्वामी से पूछे, आप ही बताओ कहां है अनुकूल स्थिति। जैसे थोड़ी गर्मी का मौसम शुरू हुआ है, तो यहां पर हमें थोड़ी गर्मी भी लग रही होगी, और पूर्ण रूपेण हमारे शरीर और मन के लिए अनुकूल स्थिति नहीं होगी इस समय। अंगूर का जूस और अंगूर खाने के बाद और पोहा लेने के बाद अब ये फिलॉसफी सुनना थोड़ा कठिन जाता है, कि ज्यादातर ये सब होने के बाद फिर आराम फरमाते हैं ना, शरीर आराम मांगता है, वो शरीर अपना अनुकूल स्थिति ढूंढ रहा है। और फिर हमें बैठना है और ध्यान से सुनना है, तो मन इसे प्रतिकूल मानता है, शरीर भी प्रतिकूल मान रहा है, मन भी प्रतिकूल मान रहा है। अब देखिए, आत्मा को ढूंढना है अनुकूल स्थिति, जहां पर सब कुछ प्रतिकूल है, और जब हम सत्संग में बैठते हैं तो शरीर और मन उस सत्संग को प्रतिकूल मानता है। बैठना मुश्किल होता है, पैर दर्द करते हैं, घुटने में दर्द होता है, मन बोर होता है, शुरू हो जाता है, फिर मन अलग अलग प्रकार के विचार और यहां वहां सोचना, भागना। तो ये देखिए, ये द्वंद्व चल रहा है आत्मा और स्थूल और सूक्ष्म शरीर, प्रतिकूल तत्वों से लड़ रहे हैं दोनों। तो रूप गोस्वामी जो हमें ये सिद्धांत दिए हैं पालन करने के लिए, कलयुग में हम इसे इस प्रकार से अनुवादित करेंगे कि हमें प्रतिकूल स्थिति को अनुकूल बनाना है, क्योंकि कहां कहां वर्जनम करेंगे उसका। जैसे कि ये यदि ये सब पंडाल वगैरह नहीं लगाया होता तो प्रतिकूल स्थिति होती हमारे श्रवण कीर्तन के लिए। हम में से कितने धूप में, झुलसती हुई धूप में बैठकर सुनने के आदि या बोलने के आदि, कीर्तन करने के आदि। तो यदि ये सब कुछ निकाल दिया जाए तो प्रतिकूल स्थिति है। तो प्रतिकूल स्थिति को देवदर्शन प्रभु और उनके परिवार ने अनुकूल बनाया। अंगूर, अंगूर अनुकूल है या प्रतिकूल है? क्या कहेंगे आप प्रभु जी, हमारी भक्ति के अनुकूल है या प्रतिकूल है? कितनी मात्रा में हम लेते हैं उस पर निर्भर करता है वो अनुकूल है या प्रतिकूल है, और उसके कौन से स्टेज पर लेते हैं। अंगूर के अलग अलग स्टेज होते हैं। तो अब वही अंगूर उसके एक स्तर पर हमारे चार नियम के दायरे के बाहर चला जाता है, और वही अंगूर जब भगवान को भोग चढ़ाकर हम लेते हैं तो चार नियम भी नहीं बल्कि भक्ति के अनुकूल सिद्धांतों में आ जाता है। तो इसलिए हम जब इस भौतिक संसार में हमारी भक्ति कर रहे हैं तो हमें क्या ध्यान में रखना है, रूप गोस्वामी का ये सिद्धांत, केवल अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम नहीं, बल्कि प्रतिकूल्य से अनुकूल्य, वो प्रतिकूल स्थिति को अनुकूल बनाना है हमें खोज खोज कर, और वो सब हम व्यक्तिगत जीवन में अनुवादित कर सकते हैं, मेरे शरीर को लेकर, मन को लेकर, मेरे परिवार को लेकर, मेरे कामकाज को लेकर, सब जगह प्रतिकूल स्थिति है, उसे कैसे कैसे मैं अनुकूल बनाऊं। अब भगवान श्री कृष्ण जब भौतिक संसार में आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण भी अपना धाम लेकर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण जानते हैं सब प्रतिकूल है यहां पर, इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपना धाम लेकर आते हैं। इसलिए भौम वृंदावन, भौम नवद्वीप, भौम अलग अलग प्रकार के, अयोध्या, ये सब भगवान के धाम। प्रभुपाद उसे कहा करते थे स्पिरिचुअल एम्बेसीज। जैसे कि आप यदि बंबई में अमेरिकन एम्बेसी में जाओ तो वहां पर भारत के नियम नहीं है, वो एम्बेसी में अमेरिका के रूल लागू होते हैं, कोई भारतीय नियम वहां पर लागू नहीं। तो उसी प्रकार से जब भगवान यहां पर आते हैं इस भौतिक संसार में तो अपने निज धाम को अपने साथ लेकर आते हैं। भगवान का निज धाम है क्या? भगवान की लीलाएं, भगवान के पार्षद। ऐसा नहीं कि भगवान ईंट पत्थर वहां के यहां लेकर आते हैं। तो भगवान अपने पार्षद, अपनी लीलाएं, इन सब को लेकर आते हैं। अच्छा, क्या भगवान को आवश्यकता है कि आध्यात्मिक संसार के तत्वों को यहां पर लाएं? भगवान इस भौतिक संसार को आध्यात्मिक बना सकते हैं। श्रील प्रभुपाद उदाहरण दिया करते थे जैसे एक एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन होता है, वो जानता है कि कौन सा वायर कहां लगाने से हीटर चालू होता है, कौन सा वायर कहां लगाने से फ्रिज चालू होगा। वो जो एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन है वो जानता है। तो प्रभुपाद ये उदाहरण दिए, वैसे ही भगवान अपने बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति को कैसे कहां पर इस्तेमाल करना है सब जानते हैं। तो भगवान बहिरंगा शक्ति को भी अंतरंग बना सकते हैं। इसलिए भगवान भी जब इस भौतिक संसार में आते हैं तो भगवान अपने उदाहरण से सिखाते हैं कि कैसे इस भौतिक संसार को हम अनुकूल बनाएं। तो भगवान जब इतने राक्षसों का वध किया तो भगवान कर क्या रहे थे? अनुकूल स्थिति बना रहे थे। प्रतिकूल स्थिति आ रही थी, कंस प्रतिकूल स्थिति पैदा कर रहा था, भगवान उसे मारकर अनुकूल स्थिति में परिणित कर रहे थे। सारे राक्षसों का वध किया, उसे अनुकूल स्थिति में परिणित किया। तो हम लोग यहां पर आज पिकनिक पर आए हैं, कलयुग की भाषा में पिकनिक कहें। तो साधारणतः पिकनिक मौज मस्ती के लिए होती है ना। अब यदि आप किसी बाहर वाले को कहो कि मुझे बहुत आध्यात्मिक प्रेरणा मिली तो पूछेगा कहां से मिली? पिकनिक जाकर। तो आश्चर्य करेगा, पिकनिक जाकर आध्यात्मिक प्रेरणा, ये कुछ ठीक मेल नहीं हुआ। क्योंकि पिकनिक में तो किसकी प्रेरणा मिलती है? मौज मस्ती। तो लोगों को लगता है कि सत्संग में कोई मौज मस्ती नहीं और मौज मस्ती में कोई सत्संग नहीं, है ना। परंतु प्रभुपाद की कृपा से मौज मस्ती में भी सत्संग हो सकता है और सत्संग में भी मौज मस्ती हो सकती है। श्रील प्रभुपाद एक बार अपने शिष्यों के साथ बैठे थे और प्रभुपाद ने कहा, अपने शिष्यों को पूछा अंग्रेजी में, सो व्हाट इज द गोल ऑफ द हरे कृष्ण मूवमेंट। तो सभी बताने लगे अलग अलग तरीके से, क्या उद्देश्य है इस हरे कृष्ण आंदोलन का। प्रभुपाद ने सुना, सब अपने अपने विचार व्यक्त किए, प्रभुपाद सुने उनको। उसके पश्चात प्रभुपाद बोले, द गोल ऑफ द हरे कृष्णा मूवमेंट इज टू सिट ऑन द बैंक्स ऑफ जमुना एंड एंजॉय अ नाइस पिकनिक विद कृष्णा। कि यही एकमात्र उद्देश्य है हम हरे कृष्णा वालों का, कि जमुना के तट पर भगवान श्री श्याम सुंदर के साथ पिकनिक मनाएं। तो प्रभुपाद फिर पूछे, हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू एंजॉय अ पिकनिक विद कृष्णा ऑन द बैंक्स ऑफ जमुना? तो सभी जय प्रभुपाद। मनाना चाहेंगे हम लोग सब? तो इसलिए मैंने सोचा कि दशम स्कंद से हम उस दृष्टांत को लेते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण एक दिन पिकनिक के लिए निकले और भगवान ने उस पिकनिक में कौन कौन सी स्थितियों को अनुकूल स्थिति में देखा और हमें शिक्षाएं दी। क्योंकि हरे कृष्णा सत्संग में मौज मस्ती के साथ शिक्षाएं भी होनी चाहिए, केवल मौज मस्ती और कोई शिक्षा नहीं, तो वो फिर सत्संग नहीं। और केवल शिक्षा शिक्षा, तो उस शिक्षा का एक और अर्थ क्या है? पनिशमेंट। तो भगवान भी जब अपने ग्वाल बालों के साथ जाते थे, तो भगवान, हम केवल यही सुने हैं कि भगवान बस उनके साथ खेलना कूदना मौज मस्ती इसी में लगे रहते। केवल इतना ही नहीं था, भगवान बहुत गुह्य और बहुत डीप ज्ञान भी देते थे अपने ग्वाल बालों को। अब देखिए, दशम स्कंद में बताया गया है, जब भगवान ने गोपियों के साथ वो चीरहरण लीला की, वो भगवान को अपने पति के रूप में चाहती थी, तो भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की और भगवान ने उनके वस्त्र पेड़ों पर छिपा दिए थे। और फिर एक एक कर गोपियां आईं और अपने अपने वस्त्र लिए। इसके पश्चात अब भगवान अपने ग्वाल सखाओं के साथ वृंदावन के सैर पर निकले। परंतु उससे पहले बहुत ही सुंदर श्लोक भगवान द्वारा कहा गया है। ये जब गोपियों की इच्छा पूरी की भगवान ने, उसके पश्चात अपने ग्वाल सखाओं के साथ जाने से पहले, नमय्या वेश तद्धियाम काम कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धान प्रायो बीजाय नेशते। भगवान इस सुंदर श्लोक में कहते हैं कि जो भक्त अपनी स्वेच्छा से मुझ में मन लगाते हैं, वो कभी भी इंद्रिय भोग की इच्छा उनके अंदर पैदा ही नहीं हो सकती। केवल अपनी स्वेच्छा से मुझ में मन लगाते हैं, उनके अंदर इंद्रिय भोग की इच्छा पैदा ही नहीं हो सकती। और उदाहरण दिया है कि जैसे कि धूप से ये जौ का जो दाना होता है, बार्ले कॉर्न, जौ बोलते हैं उसे, बार्ले काला जो होता है, तो धूप के वजह से, अधिक धूप के वजह से उसके अंदर उपजाऊ शक्ति चली जाती है। और उसे भगवान कहते हैं कि यदि ये भूमि में डालो तो उसमें से कुछ नहीं उगेगा। फिर अंग्रेजी में उसे कहेंगे बर्न्ट सीड्स, जले हुए जो बीज होते हैं, एक बार बीज को जला दो तो उसमें से कुछ नहीं उग सकता। तो वैसे ही भगवान कहे हैं कि भगवान की भक्ति, भगवान के स्मरण की अग्नि में जब ये भौतिक इच्छाओं को जला दिया जाए तो ये भौतिक इच्छाएं फिर कुछ पैदा नहीं कर पाएंगी। अब सुखदेव गोस्वामी आगे बताते हैं परीक्षित महाराज को कि भगवान ने इसी प्रकार से इन गोपियों की इच्छाओं को शुद्ध किया। अब इसके आगे भगवान निकले अपने सखाओं के साथ, इस प्रकार की कोई स्थिति हुई होगी वन में। और देखिए भगवान स्वयं, उनका एक नाम है वनमाली। आजकल यदि किसी को माली कहो तो एक अपशब्द हो जाएगा, किसी बड़े व्यक्ति को कहो माली तो माली शब्द ये केवल जो गार्डनिंग करते हैं उनके लिए। देखिए भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम अपना एक नाम रखे हैं वन माली। क्यों? क्योंकि वो इतना प्रेम करते हैं और वो रक्षा करते हैं वनों की। केवल प्रेम ही नहीं करते, जैसे गौओं से प्रेम करते हैं और उनकी रक्षा भी करते हैं गोपालक। तो भगवान अब वन में निकले हैं इसलिए वन माली उनका ये नाम और उनके जो गुण हैं ये दिखते हैं हम। अथ गोपई परिवृतो भगवान देवकी सुत वृंदावनात् गतो दूरम चारयन गा सह अग्रज। अपने अग्रज बलराम जी के साथ भगवान निकले वृंदावनात् गतो दूरम, थोड़े वन में, वृंदा के वन में थोड़े अंदर तक, दूर तक अंदर गए वो भगवान श्री कृष्ण। और गवों के साथ, अपने ग्वाल सखाओं के साथ, और जैसे यही इसी प्रकार का समय था, इसी यहां पर लिखा गया है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि धूप बहुत कड़ी थी, जैसे धूप बहुत कड़ी है बाहर, तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं निदाघा तार पे तिग्मे छाया भी स्वभिर आत्म भी, कि जो धूप अर्क, यहां पर अर्क का अर्थ है सूर्य, सूर्य का एक नाम है अर्क, तो सूर्य आतपे, सूर्य तपा रहे थे सबको, परंतु भगवान श्री कृष्ण और उनके ग्वाल सखा और उनके गौ उन्हें बिल्कुल भी इसकी जो तपन है वो नहीं लग रही थी। क्यों? क्योंकि भगवान बोल रहे हैं आतपत्र, कि उनके ऊपर एक आतपत्र, आतपत्र का अर्थ है छतरी, उनके ऊपर एक स्वाभाविक सी छतरी बनी हुई थी। और वो छतरी किसकी थी? व्रज ओकश द्रुमान, वो छतरी थी कल्प वृक्षों की। तो यहां पर भगवान अब वृंदावन में आगे निकले हैं। इसका अगला जो अध्याय है वो है भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार किया। तो भगवान ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार किए और इसके बीच में अब इस वृंदावन में विचरण कर रहे हैं। तो भगवान इन श्लोकों में केवल वृक्षों का गुणगान कर रहे हैं। देखिए वृक्षों के विषय में भगवान अपने मुख से बोल रहे हैं, इसलिए हालांकि ये सबसे प्रतिकूल स्थिति होगी किसी जीव के लिए वृक्ष की योनि में जाना, परंतु भगवान अपनी वाणी से ऐसी प्रतिकूल स्थिति को अनुकूल बनाकर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। अब देखिए, इतनी झुलसती हुई धूप में किसी जीव को इस शरीर में डाल देना और खड़े रहो सैकड़ों वर्ष, कितना बड़ा दंड है ये। हम यहां पर 2-3 घंटे के लिए भी उस धूप में नहीं खड़े रह सकते। तो कल्पना कीजिए, ये वृक्ष कितने वर्षों से यहां पर खड़े हैं। कभी इन्होंने देवदर्शन प्रभु से पूछा नहीं, एक पंडाल मेरे लिए भी लगाओ कभी। उल्टा यदि ये पंडाल नहीं होगा तो वो पंडाल बनते हैं, है ना। हम उसकी छांव में जाकर बैठते हैं। तो यही भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ये जो अर्क तप्त, अर्क की वजह से जो तपन हो रही है, इसे दूर ये द्रुमन, ये वृक्ष कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों के साथ बहुत सी लीलाएं की हैं, तो आज हम वृक्षों से क्या सीखते हैं ये भागवत से समझेंगे। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण को कदम का वृक्ष बहुत प्रिय है और श्रीमती राधारानी को तमाल का वृक्ष, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम वृक्ष से संबंधित है। कौन सा नाम? तमाल कृष्ण। इतना भगवान वृक्षों से प्रेम करते हैं कि अपना एक नाम वृक्षों के संदर्भ में रख लिया है। और भगवान ने बहुत सी लीलाएं की वृक्षों के संदर्भ में। जैसे कालिया का वध जब किया तो भगवान कदम, वो अभी भी वो वृक्ष है जिस वृक्ष पर भगवान चढ़े और यमुना में कूदे कालिया का उद्धार करने के लिए। तो भगवान वृक्षों के इर्द गिर्द बहुत सी लीलाएं किया करते। जैसे भगवान जब खेलते खेलते थक जाते तो भगवान वृक्ष का जो मूल है उसे सिरहाना बनाकर सोते। कल्पना कीजिए कि क्या सौभाग्य है उस वृक्ष का जिसके मूल को भगवान सिरहाना बनाए। भगवान ने गीता में अपने धाम को अश्वत्थ वृक्ष कहा है और उसका जो प्रतिबिंब है वो भौतिक संसार। यहां तक कि वृक्षाणाम, भगवान कहे हैं कि वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष भगवान है और इसलिए उनकी पूजा होती है उन वृक्षों की। नलकोर और मणिग्रीव, उनके ऊपर भी जब नारद मुनि ने अनुग्रह किया तो वृक्ष बनाया। चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने अपने हाथों से केवल 8 श्लोक लिखे और उसमें जो सबसे ज्यादा गुह्य और गहरा जो अनुवादित श्लोक है वो है त्रिणादपि शुनि चेन तरोर इव सहिष्णुना। ये दोनों में उदाहरण चैतन्य महाप्रभु किसके लिए हैं? तृण, जो कि वृक्ष से संबंधित है, और तरु। अब देखिए, जब भगवान कुछ उदाहरण दें तो साधारण उदाहरण नहीं होगा। हम तो यहां वहां के उदाहरण दे देते हैं अपने प्रवचन में, परंतु भगवान जब कुछ उदाहरण देते हैं तो सोच समझ के, और जो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण वही वो देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थ का उदाहरण दिए हैं गीता में, चैतन्य महाप्रभु अपनी शिक्षाओं में वृक्ष का उदाहरण दिए हैं कि वृक्ष के समान, वृक्ष से ज्यादा सहिष्णु एक भक्त को होना चाहिए। तो हम जब यहां पर आए हैं तो हमारे मौज मस्ती के साथ हमें ये सब कुछ भी सीखना, क्योंकि हम जब अपने शहर में रहते हैं तो इतने ज्यादा वृक्ष के ऊपर ध्यान नहीं देते, परंतु यहां पर आए हैं तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ध्यान दिला रहे हैं सभी ग्वाल सखाओं, देखो देखो इन वृक्षों को देखो कि ये कितने ज्यादा कृपालु हैं। आत्मपत्र, ये छतरी बने हुए हैं। तो पहले दिखाए इन सबको। अब ऐसा नहीं कि ग्वाल सखा सब भगवान से कहें, अरे क्या लेक्चर शुरू किया है, कुछ खेलते हैं चलो। भगवान यहां पर अगले श्लोकों में ऐसी फिलॉसफी सुना रहे हैं अपने ग्वाल सखाओं को कि खेलना मिलना तो चलता रहेगा, लेकिन ये वृक्षों के प्रति हमारी कृतज्ञता हमें व्यक्त करनी चाहिए। ये खड़े हैं कितने वर्षों से, सेवा में लगे हैं हमारी। अब भगवान कहते हैं भागवत में कि वृक्षों का एक नाम है पादप। पादप का अर्थ है कि जो पैर से खाते। अब देखिए, यदि हमें कुछ ऐसी स्थिति में डाल दिया जाए कि हमें पैर से खिलाया जाए, मानो आज का ग्रेप फेस्टिवल पैर से हमें, तो क्या उसमें आनंद आएगा? पैर से कोई खाएगा? तो ये जो पेड़ हैं, भगवान कहते हैं ये अपने पैरों से खाते हैं। कैसे पैरों से खाते हैं? उनके जो पैर हैं, मूल हैं, वहां पर डाला जाता है। डाला क्या जाता है? पानी। और वो भी ये जब घरों के पास जो पेड़ होते हैं तो ठीक है, कोई व्यक्ति लाकर रोज डाल दे पानी, परंतु कितने सारे पेड़ जंगलों में हैं, ऐसा नहीं कि रोज कोई उसमें पानी डाल रहा है। पूरे वर्ष भर तो निर्जल करते हैं वो, और जब वर्षा होती है तभी उनमें पानी मिलता है। हम साल में एक बार निर्जल करते हैं पूरा 24 घंटे, उसी में कैसे तो वैसे हो जाता है। तो सोचिए, इनको पादप कहा गया है कि एक तो पैरों से खाते हैं और वो भी केवल जल। तो वृक्षों से, मैं भगवान श्री कृष्ण के श्लोक पढ़ रहा था तो कुछ पांच हम शिक्षाएं ले सकते हैं हमारी साधना भक्ति में, कि हम जब ऐसी जगह पर आते हैं तो क्या हम सीखें इनसे। सबसे पहला, सदाचार या सादा जीवन। वृक्षों का जीवन कितना सादा होता है कि केवल स्वयं के लिए क्या लेते हैं? जल। और वो भी नियमित रूप से नहीं मिलता उन्हें। कई तो ऐसे वृक्ष होते हैं उन्हें उनके जड़ों को अंदर ढूंढना पड़ता है धरती में कहां जल मिले, इसलिए वो जड़ें धरती में और अंदर जाती हैं जल ढूंढते हुए, वो भी कभी मिलता नहीं। रेगिस्तान में भी पेड़ हैं, सोचिए वहां पर तो बिल्कुल पानी नहीं, वर्षा भी नहीं होती। तो सबसे पहली शिक्षा हम पेड़ से या वृक्ष से क्या लेते हैं? भगवान बता रहे हैं, सादा जीवन। भगवान अब आगे कहते हैं, सबको पुकारते हुए बोलते हैं, हे स्तोक कृष्ण, हे अंशो श्रीदामन सुबल अर्जुन विशाल वृष भोजस्विन देव प्रस्तव वरु थप पश्यतैतान महाभागन परार्थैकांत जीवितान वात वर्षात हीमान सहंतो वारयन्ति न। पुकार रहे हैं, ओ स्तोक कृष्ण, अंशु, श्रीदाम, सुबल, अर्जुन, वृषभ, ओजस्वी, देवप्रस्थ, वरुथप, देखो ये महाभाग वृक्षों को देखो जिन्होंने अपना सारा जीवन दूसरों के लिए दे दिया है, और कितने सहिष्णु हैं ये। तो ये दूसरी शिक्षा हम वृक्षों से सीखते हैं, सहिष्णुता। और सहिष्णुता इनके समान किसी की नहीं देखी गई है। कोई भी योनि में इतनी सहिष्णुता नहीं देखी गई है जितने वृक्षों में। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि ये जो वृक्ष हैं, ये खुद धूप लेते हैं अपने ऊपर और दूसरों को छांव देते हैं। तो यदि देखा जाए तो अब ये जो वृक्ष है नीम का, यहां पर ये अपने ऊपर धूप लिए हैं और उसके बदले में दे क्या रहा है? छांव। हमारे जीवन में हम देखते हैं कि जब हमें कोई प्रेम देता है तो हम फिर देते हैं प्रेम, जब हमें कोई प्रेम नहीं देता या उल्टे उसके बदले कुछ और देता तो फिर हम हमारे वहां से वही निकलता है बाहर। जैसा इनपुट होता है वैसा आउटपुट होता है। परंतु इनका इनपुट देखिए, इतनी धूप ऊपर से परंतु बाहर क्या दे रहे हैं? छांव। और भी आगे भगवान बताएंगे कि क्या कुछ नहीं देते ये। तो यहां पर तो ये वृक्ष सहन कर रहे हैं, धूप को सहन करते हैं। पाश्चात्य देश में आप जाओ वहां पर ठंड को सहन करते हैं, इतनी ठंड होती है पूरा वृक्ष बर्फ से भरा हुआ। तो गर्मी के मौसम में ये वृक्ष खुद के ऊपर धूप लेता है और दूसरों को ठंडी छांव देता है, और सर्दी के मौसम में ये वृक्ष खुद के ऊपर बर्फ लेता है, दूसरों को लकड़ी देता है गर्माने के लिए। यहां तक कि जब लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए वन में जाता है, वृक्ष को काटने के लिए वन में जाता है, तो वो अपनी कुल्हाड़ी से मारता है वृक्ष के ऊपर। और ये देखा गया है कि कोई यदि बहुत बड़ा वृक्ष है तो उसे पूरा दिन लगता है उसे काटने में। तो वो करता क्या है कि आधे दिन तक उसे काट देता है, उस वृक्ष के कुछ भाग को काटता है, और फिर उसके भोजन का समय लंच टाइम जब उसका होता है तो वो लंच कहां लेता है? उसी वृक्ष की छांव में बैठकर। और वो जो आधा कटा हुआ भाग वृक्ष का उसी में अपनी कुल्हाड़ी रोपता है। वो शरीर है उस वृक्ष का, उसी में कुल्हाड़ी रोपता है और उसी की छांव में बैठकर भोजन लेता है, फिर एक घंटा आराम फरमाता है और फिर उठकर कुल्हाड़ी निकालकर वापस उसी वृक्ष को मारना शुरू। इसे कहते हैं सहिष्णुता। ये भगवान सिखा रहे हैं कि इस प्रकार से सहनशील एक भक्त को होना चाहिए, तब जाकर कीर्तनीय सदा हरि हो पाएगा। तो यदि हम वृक्ष के इस भाग के उदाहरण को लें कि यदि कोई हमारे ऊपर कुल्हाड़ी चलाने आए तो क्या हम वृक्ष की तरह सहिष्णु हैं कि उसकी कुल्हाड़ी भी खाएं, उसे छांव भी दें और उसके पश्चात जब वो खा पीकर अब ठीक से तंदुरुस्त हो गया तो फिर से वो कुल्हाड़ी हमारे शरीर पर चलाएं? अब देखिए, वृक्ष जो है उसके ऊपर ये जो पंछी होते हैं ये अपना बसेरा घोंसला बनाते हैं, तो क्या हम उस स्थिति में हैं कि हम अपने शरीर पर किसी को रहने के लिए? कोई एक मच्छर भी थोड़े समय के लिए बैठता है, सोचता है इतना बड़ी शरीर है थोड़ी तो जगह दो मुझे बैठने के, तुरंत उसे वहां पर ही मारते हैं। हिम्मत कैसी हुई मेरे ऊपर बैठने? और वो भी यदि वो खून चूसने लग जाए, इतना बड़ा अपराध तूने किया, मेरा खून चूसा तूने, तो कई तो उसको चूस ले। फिर एक बार मायापुर में हमारे रशिया से बहुत से भक्त आए थे, तो वो अब मायापुर में बहुत मच्छर हैं, यदि आप वहां पर अनुभव किए, बहुत बड़े बड़े मच्छर। तो ये रशिया से ये कोई मच्छरदानी या ओडोमोस कुछ नहीं लगाते। तो इनको हमारे एक ब्रह्मचारी ने पूछा कि आप ओडोमोस कम से कम वो तो लगाइए, इतने मच्छर बीमार हो जाएंगे। तो ब्रह्मचारी ने, रशियन ब्रह्मचारी ने कहा, लेट देम ड्रिंक। तो उनको समझ में नहीं आई क्या अर्थ हुआ लेट देम ड्रिंक। तो पीने दो उनको, जितना सारा पाप किया है वो खून बाहर निकलने दो। ये उनकी कॉन्शियसनेस थी कि हमने पता नहीं कितना मांस खाया, कितना नशा किया, वो सब ये खून में है, सब पीने दो इनको, निकल जाने, शुद्ध कर रहे, धाम के हैं एक तो। जयानंद प्रभु, प्रभुपाद के शिष्य, वो जब बीमार पड़ते तो फीस्ट खाते। जब डॉक्टर कहता है कि ये बंद करो ये सब खाना, तो उनको जब पूछा जाता कि आप बीमार हैं तो फीस्ट क्यों खा रहे, ज्यादा खाते हो, तो खुद के लिए नहीं खाते, वो बोलते हैं कि बीमार जब व्यक्ति होता है तो सारे बैक्टीरिया वायरस वो अंदर बहुत एक्टिव होते हैं, तो उन्हें प्रसाद मिले अभी वो एक्टिव हुए इसलिए वो ज्यादा खाते। तो वृक्ष देखिए कि अपना सब कुछ वो देता है, सहन करता है। यहां पर भगवान कहते हैं सहन करता है, और सहन करते करते परोपकार चलता है। तो ये जो तीसरी शिक्षा हम वृक्ष से लेते हैं, भगवान यहां पर बता रहे हैं कि कई बार व्यक्ति सहन करते हैं परंतु परोपकारी नहीं होते। वो बहुत से व्यक्ति होंगे जो बहुत सहिष्णु होंगे, सहनशील होंगे, परंतु सहनशीलता के साथ साथ परोपकारिता ये नहीं देखी जाती इतनी। अब बंबई में जाओ, कितने लोग क्या कुछ नहीं सहन करते बंबई के शहर को, गर्मी, पसीना, प्रदूषण, परंतु वो सब खुद के लिए, स्वयं सेवा के लिए, परोपकार के लिए नहीं। परंतु यहां पर ये वृक्ष के बारे में बताया गया है, भगवान कहते हैं कि एक सुंदर श्लोक में बता रहे हैं कि एक वृक्ष के कितने सारे भाग वो दे देता है मनुष्य समाज को उपयोग में लाने के लिए। पत्र पुष्प फल छाया मूल वल कल दारू भी गंध निर्यास भस्मास्ति तोकमय कामान वितन्विते। कामान वितन्विते, हमारे कामना को पूरी करने के लिए ये वृक्ष सहन करते करते क्या कुछ नहीं देता। पत्र, पत्र कहते हैं पत्ते को, तो पत्ता हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे वृक्ष के पत्ते पर हम खाते हैं, वृक्ष के पत्ते को भी खाते हैं, तो अपना पत्ता वृक्ष देता है हमारे लिए। यहां पर हम ये जो तीसरा गुण है वृक्ष का, परोपकारिता, वो देख रहे हैं। तो पत्ता देता है वृक्ष, पुष्प, अपना पुष्प देता है, कितने सुंदर पुष्प हैं देखिए पीछे, ये सब वृक्ष जो अपना पुष्प देता है। फल, आज उसी के लिए तो हम लोग सब वो अंगूर के फल को चखने के लिए, तो जाकर देखो वो कैसे खड़े हैं कितने समय से वहां पर, धूप में और सर्दी गर्मी सब प्रकार के वातावरण में वहां पर खड़े हुए वो हमें क्या प्रदान करते हैं, मीठे फल। तो फल, छाया, इसकी चर्चा हमने की, मूल, उसका जो मूल है वृक्ष का मूल वो भी बहुत काम आता है। एक बंबई में एक व्यक्ति के घर हम गए थे तो उन्होंने एक बड़े वृक्ष का मूल उसे वार्निश वगैरह कराकर अपने लिविंग रूम में ऐसे डेकोरेटिव पीस लगा कर रखा था। उसके ऊपर वो टेबल भी लगाते हैं, कांच रख देते हैं उसके ऊपर, और वो बहुत बिकता है, वो बहुत पैसों में, पेड़ का जो मूल है। तो यहां पर भगवान बता रहे हैं कि वो जो मूल है वो वृक्ष दे देता है। वल्कल, वल्कल किसे कहते हैं? बार्क। तो जो जंगली जाति के लोग होते हैं जिनके पास कोई कपड़ा इत्यादि नहीं, तो वो वल्कल उस पेड़ का इस्तेमाल करते हैं, अपने ऊपर डालते हैं अपने शरीर को ढकने के लिए। दारू भी लकड़ी। अब देखिए लकड़ी कितने सारे उपयोग हैं लकड़ी के, कि हम क्या कुछ नहीं लकड़ी का बनाते इस्तेमाल करते। वो सब वो वृक्ष का मूल शरीर है, वहां से वो सब कुछ अपना दे रहा है। पाश्चात्य देश में तो इतनी लकड़ी इस्तेमाल होती है ये पेपर छापने के लिए। प्रभुपाद कहा करते थे कि ये लकड़ी या वृक्ष जो अपनी लकड़ी देती है, वृक्ष जो अपना लकड़ी देता है, वो हर समय प्रतीक्षा में रहता है कि कब भक्त आएंगे, और दो, एक तो मेरी लकड़ी से भगवान का अर्च विग्रह बनाए जैसे जगन्नाथ जी, या मेरी लकड़ी को काट कर ग्रंथ छापे जैसे भागवत भगवत गीता। परंतु सबसे ज्यादा दुख वृक्षों को होता है जब वृक्षों की लकड़ी इस्तेमाल की जाती है बेकार के फालतू न्यूज़पेपर और फिल्म मैगजीन इनको छापने। दक्षिण भारत में एक वैष्णव हैं, वो एक बहुत विचित्र प्रकार की समाज सेवा करते हैं। उनकी समाज सेवा ऐसी है, धन है काफी उनके पास, तो वो करते क्या है, उस धन से वो बुक स्टोर में जाते हैं और जितने सारी ये बेकार फालतू की जो मैगजीन पुस्तकें हैं उसे खरीदते हैं, और बहुत मात्रा में खरीदते हैं और फिर उसे जलाते हैं। तो उनसे जब पूछा गया कि ऐसा क्यों करते हैं, बोले बाकी मैं ग्रंथ तो छाप नहीं सकता, मेरे पास उतनी बुद्धि नहीं है, तो कम से कम ये जो बेकार फालतू की पुस्तकें और मैगजीन हैं इन्हें तो मैं बाहर जाने से रोकूं। इसलिए उनको खरीद खरीद के जलाते, ये मेरा यज्ञ, वो जो अग्नि जलती है ये मेरा यज्ञ। तो इसलिए वो वृक्ष अपने आप को सफल मानता है जब अपनी लकड़ी से अर्च विग्रह की सेवा में लगता है या ग्रंथ जब छपते हैं। गंध, उनसे गंध निकलती है वृक्षों से, चंदन, और वो चंदन भगवान की सेवा में इस्तेमाल होता है। कलयुग में तो नेताओं के मृत शरीर को उस चंदन की लकड़ी में जलाया जाता है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शरीर को चंदन की लकड़ी में जलाया गया, तो उससे क्या होने वाला है, वो शरीर भस्म होने वाला है, वो चंदन भी भस्म होने वाला है, और वो शरीर से तो दुर्गंध ही निकलने वाली है, और कितना उसे ढकेंगे चंदन से। तो यहां पर गंध, निर्यास, निर्यास जानते हैं क्या कहते हैं, जब पेड़ से, अंग्रेजी में उसे कहते हैं सैप, वो निर्यास, जैसे ये डिंक निकलता है ना, चीक, हाँ, तो ये ये भी जो वृक्ष है, सोचिए ये हो सकता है कि वृक्ष के रगों का खून ये निकाल निकाल कर हमें हम देते हैं और हम फिर डिंक का लड्डू बनाते हैं। तो कोई हमें पूछे थोड़ा आपका भी निकाल के दो, लड्डू बनाऊं। अस्थि अपने अपने शरीर, जैसे अस्थि हम कहते हैं हमारे शरीर को, वैसे अस्थियां उस वृक्ष की निकलती है और उसके अलग अलग प्रकार के पदार्थ बनते हैं। तोकमई, तोकमई कहते हैं शूट्स, जैसे वृक्षों की टहनियां हैं, वृक्षों की जो शाखा है, शाखा और टहनियां हैं, वो अलग अलग प्रकार से उसका इस्तेमाल होता है। जैसे एक एक बच्चों के स्कूल में उनकी पुस्तक में एक कहानी थी, एक बीज वो धरती पे गिरा हुआ था, तो उस बीज को खाने के लिए एक चिड़िया आई। तो उस बीज ने चिड़िया से कहा कि मुझे अभी मत खाओ, कुछ समय रुको, प्रतीक्षा में रहो, मैं बहुत से बीज दूंगा। तो चिड़िया रुकी, बीज को खाई नहीं, तो वो बीज फिर एक पौधे में परिणित हुआ, वो धरती में गया और पौधे में परिणित हुआ। तो जैसे वो पौधे में परिणित हुआ, उस पे कुछ पत्ते आए, तो बकरी आई अब उस पत्ते को खाने। तो अब उस पौधे ने बकरी से कहा कि तुम भी थोड़ी प्रतीक्षा में रहो, तुम्हें बहुत कुछ और मैं दूंगा। तो पौधा फिर धीरे धीरे थोड़े से वृक्ष में परिणित होने वाला था। तो एक बूढ़ी महिला आई उसकी टहनियां तोड़ने के लिए, खाना वाना पकाने के लिए, तो उसे भी प्रतीक्षा करने के लिए उस वृक्ष ने कहा। और जब वो वृक्ष पूर्ण रूपेण प्रफुल्लित तरीके से बढ़ गया, उग गया, तब उस वृक्ष ने उस चिड़िया को बुलाया, बकरी को बुलाया और उस वृद्ध महिला को बुलाया कि अब उस वृक्ष के जो फल थे उसमें इतने अनगिनत बीज, जो कि एक चिड़िया नहीं अनगिनत चिड़िया खा सकती, और इतने पत्ते वो अपना झाड़ता वृक्ष, कि सारे बकरियों को कहा कि एक नहीं तुम और भी अपने पूरे समुदाय को लेकर आओ। और फिर वृद्ध महिला को कहा कि तुम्हारे भी जितने सारे वंशज हैं उन सब के लिए आगे आने वाले, तुम तो चली जाओगी परंतु मैं खड़ा रहूंगा यहां पर, अपनी टहनियां देता रहूंगा। तो ये परोपकारिता भगवान कहते हैं इस वृक्ष से हम सीखते हैं। और फिर भगवान एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है ये भागवत का, जो भगवान वृक्षों को देखते हुए बोल रहे हैं। एतावत् जन्म साफल्य देहिनाम इह देहिषु प्राणैर अर्थैर दिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। कि ये आचरण हमें इनसे सीखना चाहिए, वृक्षों से। कैसा? कि हर एक जीव को इन वृक्ष के समान होना चाहिए। देही नाम यह देहिशु, हम जो इस देह में हैं, हमारे लिए भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं कि दूसरों के परोपकार के लिए हमारा जीवन होना चाहिए। एतावत् जन्म साफल्य, हमारा जन्म सफल तभी होगा जब हम इन वृक्षों के समान दूसरों के लिए जिएंगे। भगवान यहां पर हम सब मनुष्यों के लिए कहें, परंतु विशेष रूप से हम जो वैष्णव हैं, गांधी जी कैसे गाते थे, वैष्णव जनते तेने कहिए पीड़ पराई जाने, कि वैष्णव की परिभाषा वही है कि जो दूसरों की पीड़ा को खत्म करे, कम करे, वो है वैष्णव। पर दुख दुखी। तो यहां पर भगवान कहते हैं कि ये वृक्ष से हम क्या सीखते हैं, प्राण, अपने प्राणों को दूसरे की सेवा में लगा दो। अर्थ, जो भी हमारे पास अर्थ है या पैसा है उसे दूसरों की सेवा में लगाओ। धिया, हमारी बुद्धि को दूसरों की सेवा में लगाओ। वाच, हमारे वचनों को दूसरे की सेवा में लगाओ। तो ये भगवान वृक्षों को देखते हुए हमें सिखा रहे हैं, प्राणैर अर्थैर धिया वाचा। और भगवान ये इसलिए ग्वाल सखाओं को सुना रहे हैं। ग्वाल सखा मानो भगवान से पूछे कि ये अचानक आज वृक्षों को देख के इतना बड़ा फिलॉसफी क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आगे चलकर ये जो ब्राह्मण हैं, भगवान अब इनको भेजने वाले, इन ब्राह्मणों के पास जाकर इनसे भिक्षा मांगो, तो ये ब्राह्मण कुछ नहीं देने वाले और इन ब्राह्मण की पत्नी जो है वो सब कुछ देने वाली है। तो इसका अगला अध्याय वही है, ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार। तो भगवान इन सखाओं को आगे चलकर फिर याद दिलाएंगे, तुम्हें याद है मैंने वृक्षों के बारे में क्या कहा था कि ये वृक्ष इतने निस्वार्थ कि सब कुछ अपना दे देते हैं, सर्वस्व अपना न्योछावर कर देते हैं सभी जीव जंतुओं के लिए और कुछ नहीं मांगते उसके बदले में। और ये ब्राह्मण जो कि इतने विद्वान अपने आप को मान रहे हैं, इतने तपस्वी अपने आप को मान रहे हैं, इतने बड़े कुल में पैदा हुआ अपने आप को मान रहे हैं, ये भिक्षा तक नहीं दे सकते। तो ऐसे ब्राह्मण से ये वृक्ष भले, भगवान आगे चलकर इन ग्वाल सखाओं को ये बताए, ये वृक्ष भले, इनका जीवन भला, इनका जीवन सफल कि जो हमें छांव दे रहे हैं इतनी धूप में। तो ये अगला जो निस्वार्थ भाव वृक्ष का, वो भगवान जो अगली शिक्षा है वो हमें सुना रहे हैं कि निस्वार्थ भावना से देना। अब देखिए, व्यक्ति दान भी देता है परंतु उसमें कुछ तो स्वार्थ रहता है, मेरा नाम हो इसके बदले में मुझे कुछ मिले। परंतु वृक्ष जब दान में देता है अपना फल, अपने पत्ते, अपने पुष्प, वलकल, ये दारू भी सब कुछ, बदले में कुछ नहीं। यहां तक बताया गया है कि ये जो अंगूर को लीजिए, अंगूर के वृक्ष को लीजिए, ये अंगूर का वृक्ष है, आज तक एक भी अंगूर नहीं खाया वो। कितने अंगूर निकले होंगे, कितने टन अंगूर निकले होंगे उसमें से, खाया कभी उसने? आम का वृक्ष लीजिए, एक भी आम वो वृक्ष कभी खाया नहीं अपना। निस्वार्थ सेवा, ये भगवान सिखा रहे हैं कि वृक्षों से हमें इस प्रकार की निस्वार्थ सेवा सीखनी चाहिए कि हर समय अमानिना मान दीन, दूसरों को देते हुए स्वयं के विषय में कोई अपेक्षा न रखते हुए निस्वार्थ भावना। और अंतिम शिक्षा हम वृक्ष से क्या लेते हैं कि ये वृक्ष अपने आप में ये बहुत कठिन परिश्रम करता रहता है, जल को ढूंढता रहता है। तो कोई पूछे कि भाई खुद के लिए ढूंढ रहा है जल? नहीं, वो मूल धरती के अंदर जल को ढूंढता रहता है, यदि कोई बाहर से जल न डाले तो मूल जल को ढूंढता रहता है धरती के अंदर। किस लिए? ताकि उस जल से वो अपने आप को सींचे और उस सिंचन से वो पुष्प पैदा करे और फल पैदा करे। किसके लिए? मनुष्य समाज के लिए, पक्षियों के लिए। तो यहां से हम क्या सीखते हैं कि हमारी साधना भक्ति उस सिंचन के समान है जो वृक्ष सिंचन करता है। तो वृक्ष का सार क्या है? उसका फल, जैसे कि अंगूर, वृक्ष का सार है उसका फल, और उसका फल सबसे अंत में आता है, पहले बीज, फिर पौधा, फिर वृक्ष, फिर पुष्प, पत्ते, ये सब होने के बाद फिर अंततः फल निकलता है उसमें से। तो इतना सब कुछ करने के पश्चात जो अंतिम फल निकले वो वृक्ष दे देता है। अब मानो वो ये भी कहे जब मनुष्य उसे लेने आता है, क्या भाई क्यों तोड़ रहे हो, किससे पूछा? परमिशन लिया? वृक्ष मानो मनुष्य से पूछे, परमिशन लिया? पूरी धूप में मैं खड़ा रहा, सारा पानी मैं ढूंढा यहां वहां से, और फल लेने के जब बारी आई तो तुम लेकर जाओगे? तो इसीलिए भगवान ने गीता में भी वो जो प्रसिद्ध श्लोक कहा उसी के संदर्भ में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल कि उस फल की इच्छा मत रखो। जैसे कि वृक्ष इतना सब कुछ करने के बाद जो फल निकलता है कुछ इच्छा नहीं, एक्सपोर्ट करो, केवल नासिक में नहीं बाहर बांटो। और यहां से जब ये फल एक्सपोर्ट होता है अलग अलग कंट्री में, यूरोप में, अमेरिका में, तो वो किसका गुणगान करते हैं? कोई यहां पर आकर ये वृक्ष का फोटो खींचने नहीं वाला और उसे छापने नहीं वाला पेपर में। गुणगान होता है जो एक्सपोर्ट करता है, उसका गुणगान होता है। तो देखिए ये पांच शिक्षाएं भगवान हमें दे रहे हैं, ग्वाल सखाओं को दिखाते हुए। देखो ये वृक्षों से ये शिक्षा, एक तो सादा जीवन, सहिष्णुता, परोपकारिता और निस्वार्थ भावना, और फिर परिश्रम करते हुए जो अंतिम सार है वो सार के लिए परिश्रम करना। वृक्ष परिश्रम करता है उस फल के लिए, फल को उगाने के लिए। तो वो हम क्या सीखते हैं कि हमारी साधना भक्ति में हमें परिश्रम जो हम कर रहे हैं उसका सार क्या है? कृष्ण प्रेम। जैसे वृक्ष परिश्रम कर फल पैदा करता है इतना मीठा, तो हम साधना भक्ति में ऐसी साधना भक्ति कर रहे हैं जो बहुत कड़वी लग रही होगी, परंतु उसका सार क्या है? कृष्ण प्रेम, जो सबसे मीठा फल है। और वो जब उग जाए तो उगने के बाद हमें करना क्या है? ऑफर कर देना है, बिना ऑफर किए नहीं खाना, क्योंकि भगवान कृपालु हैं कि जब ऑफर करते हैं तो भगवान फिर से एज इट इज, भगवत गीता एज इट इज, ऑफरिंग एज इट इज, सब कुछ यथारूप है, यथारूप भगवान दे देते हैं। बल्कि हम ये नहीं कहेंगे, यथारूप से ज्यादा दे देते हैं, अपना प्रेम उसमें डाल कर देते हैं, अपना अंश डाल कर देते हैं। इसलिए भगवान ने अपने उदाहरण से सिखाया कि भगवान के लिए हरेक स्थिति, हरेक व्यक्ति, वस्तु वो बहुत महत्वपूर्ण है। और भगवान कैसे अब झुलसती हुई धूप में अनुकूल स्थिति इन वृक्षों की देखते हुए हमें सिखाए। इसलिए हमें आज यहां पर जो हम आए हैं, हमारी जो मौज मस्ती हुई या होगी भी, उसके साथ साथ हमें जब हम जाएंगे देखने के लिए, टूर पर ले जाएंगे देवदर्शन, है ना, टूर है कि नहीं, तो टूर पर जब ले जाएंगे तो हमें ये सब जो शिक्षाएं हैं वो सब ध्यान में रखना है। कि भगवान अपने मुख से, देखिए अपने मुख से कहें, इसलिए भगवान भागवत में स्वयं भगवान का उदाहरण वृक्ष के मूल से किया गया है। भागवत का वो श्लोक है कौन सा है, मूल से उदाहरण भगवान का, यथा तरोर मूल निशेचनेन तृप्यन्ति तद् स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा चयतेन्द्रियाणाम सर्वारहणम भजमच्युतेज्य। यथा तरु मूल, तरु के जो मूल हैं वो भगवान कहे हैं वो मैं, या अपने आप की तुलना उस मूल से भगवान कर रहे हैं। देखिए इतना महत्व वृक्ष के मूल को भगवान दिए और हमारे पेट को भी, तो हम भी, हमें भी लग रहा हो थोड़ा पेट भर रहा है, लेकिन भगवान उदाहरण दिए हैं तो कोई गम नहीं। तो यहां पर भगवान इतना महत्व दिए, इतनी सारी लीलाएं भगवान की, जो स्विंग पास टाइम झूलन यात्रा वो वृक्षों पर ही होती है, वृक्ष पर ही वो झूला बनाया जाता है। और वो इतना बड़ा झूला बनाया जाता है कि उसके ऊपर भगवान अपने गोपियों के साथ रासलीला करते हैं उस झूले पर। हम तो जब झूलन यात्रा करते हैं तो केवल एकदम छोटा सा झूला जिसमें केवल राधा कृष्ण टाइट बैठ सके, लेकिन जो असली झूलन यात्रा भगवान वृंदावन में करते हैं वो झूला इतना बड़ा होता है कि उस पर भगवान सोते भी हैं, रासलीला भी रचाते हैं, बाकायदा पूरा नाचते फिरते रासलीला। तो सोचे कितना बड़ा झूला होगा, और इतना बड़ा झूला वृक्ष पर बांधा जाता है, सोचिए वो वृक्ष कितना भारी वेट ले रहा है उस झूले का। तो भगवान ने वो कदम के वृक्ष, तमाल के वृक्ष, झूलन यात्रा, रूप गोस्वामी एक बार ध्यान में बैठे हुए थे और उन्होंने ध्यान में भगवान की इस लीला का स्मरण किया। जब श्रीमती राधा रानी वो एक फल, पता नहीं शायद अंगूर ही होगा या पता नहीं कौन सा फल, वो फल लेने के लिए वो वृक्ष हाथ नहीं पहुंच रहा था राधा रानी का, तो राधा रानी अपने अंगूठों पर खड़े होकर वो फल तोड़ने की कोशिश कर रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण पहुंचे। तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा, अरे अरे रुक रुको, इतना कठोर परिश्रम करने की क्या जरूरत है, मैं नीचे कर देता हूं। तो भगवान ने अपने हाथों से उस टहनी को नीचे किया ताकि राधा रानी का हाथ पहुंच सके। तो राधा रानी ने फिर जैसे उस फल को पकड़ा तो भगवान ने टहनी छोड़ दी, तो भगवान ने टहनी छोड़ दी, तो अब वो टहनी इतनी मजबूत कि उस टहनी ने राधा रानी को खींच लिया और राधा रानी अब उस टहनी से लटकी हुई और भगवान अब आनंद ले रहे, लटके रहो। अब इस लीला का स्मरण करते हुए रूप गोस्वामी मुस्कुरा रहे। हालांकि भगवान यहां पर कहे हैं एक श्लोक में, इस श्लोक में बोले हैं, इति प्रवाल तबक फल पुष्प दलोत्करई तरुणाम नम्र शाखानाम मध्यतो यमुनाम गतः। भगवान कहते हैं कि ये जो वृक्ष है ये देखो कितना झुके हुए हैं, भगवान ये जानबूझकर कह रहे हैं देखो कितना झुके, कितने नम्र हैं, हालांकि इतने फल लगे हुए हैं परंतु फिर भी कितने नम्र हैं। इसलिए बताया जाता है कि वृक्ष जिसमें बहुत फल लगे हुए होते हैं वो झुकता है, तो वैसे ही जो सद्गुणी व्यक्ति होता है उसे झुकना चाहिए, और जो झुकता नहीं वो उस वृक्ष के समान है जिसमें कोई फल नहीं लगते, वो केवल बांबू की तरह खड़ा रहता है। तो यहां पर भगवान नम्रता वृक्षों के दिखाते हुए इन ग्वाल सखाओं को याद दिला रहे कि देखो ये जो ब्राह्मण तुम्हें कुछ दिए नहीं, अपने आप को इतना सद्गुणी मानते हैं परंतु इतने अहंकारी, कुछ नहीं दिए तुम्हें, परंतु वो वृक्ष झुके हुए अपने सारे फल दे रहे थे, छांव दे रहे थे। तो ऐसा नम्र हमें होना है। और सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से वृक्षों का गुणगान करते हुए अब ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार करने के लिए ग्वाल सखाओं को वन में आगे ले चले कि भगवान की जो सबसे महत्वपूर्ण लीला कौन सी है, रास लीला। और वो रास लीला का प्रारंभ कैसे होता है, जब भगवान बांसुरी बजाते हैं, और बांसुरी बनी कैसे? ये बांबू से। तो बांस से बना हुआ पदार्थ भगवान अपने होठों पर लगाते हैं। तो गोपियां वो गुणगान कर रही भगवान की बांसुरी का, कि बांसुरी का सौभाग्य ऐसा है, पता नहीं ये बांसुरी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि हर समय भगवान श्री कृष्ण के अधरों पर ये बांसुरी रहती है। और वो बोलते हैं कि ये जो बांसुरी के जो माता पिता हैं, वो कितना गर्वित हो रहे होंगे कि ये भगवान कृष्ण हर समय अपने कमर में या अपने अधरों पर ही बांसुरी को रखते हैं। और तो माता पिता कौन है? ये बांस उगता कहां पर है? नदी के तट पर। तो जो नदी है वो इनकी माता, कितना गर्वित ये, क्योंकि वही झिला रही है इस बांस को। और वो जो बांस पिता, तो उस बांस से बांसुरी बनी, और माता ने जो झिलाया, नदी ने जो झिलाया, उससे ये उगा बांस और उससे बांसुरी बनी। और उस बांसुरी को भगवान ने बजाया शरद पूर्णिमा की रात्रि को, और फिर सारी गोपियां आई और रासलीला रचाई गई। तो इसलिए आज हम हमारे इस सत्संग में वृक्षों से यही सीखते हैं कि हम उनकी तरह सहिष्णु और उदार और परोपकारिता और सादा जीवन हमारा हो। और इसलिए वैष्णवों का जो प्रणाम है उसमें वैष्णवों को क्या कहा गया है? वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, कि वो सारी वांछाओं को पूरा करते हैं जैसे कि कल्प वृक्ष। तो उस प्रकार से हमें मनना है, और तब जाकर चैतन्य महाप्रभु कहें कीर्तनीय सदा हरि तृणादपि शुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय, श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, वृक्षों की जय, आज के अंगूर फेस्टिवल की जय, देवदर्शन प्रभु की जय।
क्या कार्यक्रम भक्ति में देखा जाता कि कोई बार प्रचारक प्रचार करते हैं तो उसके जीवन में बहुत सारे विपत्ति आते हैं। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि हम कल तथा परिस्थिति के अनुसार हमें जीवन चलना चाहिए, तो मतलब कैसे हम उसका कुंभ।
हाँ, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि वृक्ष हो सकता है कि इतने सहिष्णु हो, क्योंकि बोलने के लिए कोई मुंह नहीं है, अब कोई उन्हें कुछ बोले या उन्हें काटने आए तो उनके पास कुछ है नहीं उनको मारने के लिए। तो इसलिए एक जो वैष्णव है उसे एक वृक्ष से ज्यादा सहिष्णु होना है, क्योंकि वैष्णव के पास सुविधाएं हैं प्रतिकार करने की। कोई जब कुछ करता है, अपशब्द कहता है या अपमान करता है या प्रहार करने आता है, तो हमारे अंदर प्रतिकार करने की शक्ति है, उसे थप्पड़ मार सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, दूर भगा सकते हैं। परंतु फिर भी श्रीमद् भागवत का वो श्लोक है परीक्षित महाराज के संदर्भ में, तिरस्कृता विप्रलब्धा शाप्ता क्षिप्ता हता पिवा न प्रतिकूर्वंती। ये सब कुछ होता है एक वैष्णव के जीवन में, तिरस्कार होता है, अपमान होता है, उसे शापित किया जाता है, यहां तक कि यदि उसे जान से भी मार दिया जाए तब भी न प्रतिकूर्वंती, वो प्रतिकार नहीं। जैसे अम्बरीश महाराज दुर्वास मुनि ने फेंका अपने बाल को फेंका, और वो राक्षस पैदा किए, और वो राक्षस को अम्बरीश महाराज को मारने के लिए, विशेष रूप से अम्बरीश महाराज को मारने के लिए राक्षस पैदा किया। जैसे द्रुपद महाराज को द्रोणाचार्य को मारने के लिए दृष्टद्युम्न को पैदा किया, वृत्रासुर। तो इसलिए एक वैष्णव को वृक्ष से ज्यादा सहिष्णु होना चाहिए, क्योंकि सहनशीलता उसमें देखी जाती ज्यादा। जब आपके पास शक्ति है प्रतिकार करने की, जैसे परीक्षित महाराज वो श्रृंगी को श्राप दे सकते थे और कोई भी पूछता नहीं, क्योंकि परीक्षित महाराज जो उनके क्रेडेंशियल्स यदि कोई देखता कि वो पूरे पृथ्वी के राजा और वो भी पांडव के वंशज, तो परीक्षित महाराज आराम से, तुम कौन हो भाई, छोटा सा बालक और ऐसे श्राप देता है, थप्पड़ मारकर उसे बिठा देते, न प्रतिकूर्वन्ति, अपने आप को दोषी उन्होंने माना। तो ये वैष्णव का गुण है। उस बाकी सब को छोड़कर अपने आप में दोष ढूंढता है। अवैष्णव कौन है? उल्टा, जो अपने आप को छोड़कर बाकी सब में दोष ढूंढे और प्रतिकार करता रहे।
ये प्रभु ये आप बोला कि हमारे जीवन में देखते हैं कि हमें ऐसे जीवन में ऐसे रहेंगे जो यहाँ से कुछ याद है वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे हमारे दो में ऐसे करेंगे।
हम यही कहना चाहेंगे कि यदि भगवान श्री कृष्ण नील माधव प्रभु को देखें तो उनका भी उदाहरण भगवान श्री कृष्ण दें कि नील माधव प्रभु की तरह सादा जीवन, नील माधव प्रभु की तरह सहिष्णुता, परोपकारिता, और उसके साथ साथ आपकी उपजीविता भी चल रही है इतनी अच्छी। तो आप तो सबसे अच्छे उदाहरण हैं कि ये सब गुण होने के बावजूद आप सफलता के पथ पर। आप लोगों ने नई गाड़ी देखी कि नहीं प्रभु जी की? रथ, गरीब रथ। हालांकि वो शर्मा रहे हैं, उनको बता रहे थे, निशांत प्रभु बता रहे थे कि उनके पिताजी ये गाड़ी अमेरिका में भी सबसे ज्यादा बहुत कीमती गाड़ी है, यहाँ बाहर जो खड़ी है इनकी। तो ये हाल ही में मुंबई में और आई हुई, तो इनके पिताजी इनको पूछ रहे थे कि गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए। तो निशांत प्रभु को पूछे कि ये जो नई गाड़ी आई है वॉक्सवैगन, इसको लेना चाहिए कि? निशांत प्रभु बोले आंख बंद कर कर ले लीजिए। क्योंकि वो खरीदने वाले थे इसलिए बोल दिया। जब इनको पूछा गया तो प्रभु जी कहे, अरे हमारी जैन है ना, गाड़ी किस लिए चाहिए? यहां से वहां जाने के लिए चाहिए ना। तो मेरे ख्याल से आपसे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, सरलता, सादा जीवन। ये प्रश्न है इनका कि कैसे फिर हमारी उपजीविका चलेगी यदि हम सब कुछ सहन करते रहे सहन करते रहे। जब भगवान ने अर्जुन को कहा युद्ध करने के लिए, तो अर्जुन सब कुछ सहन करना चाहते थे कि नहीं, वो चाहे मारें कि मैं बिना शस्त्र के निहत्ते खड़ा होकर उनके बाण लेने के लिए तैयार हूं, बहुत कुछ जैसे वृक्ष सहन करता है। परंतु भगवान पूरी गीता सुनाए कि मुझे वो सहनशीलता तुम्हारी नहीं चाहिए, मारो। भगवान की सेवा के लिए अम्बरीश महाराज का भी गुणगान हुआ है, परीक्षित महाराज का भी, न प्रतिकूर्वंती, और अर्जुन का भी जो प्रतिकूर्वंती, भगवान ने कहा प्रतिकार करो। तो ये समझना चाहिए कि जो आवश्यक है भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो हमें करना चाहिए। यदि प्रतिकार करना आवश्यक है उस टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के लिए तो प्रतिकार करें। यदि अम्बरीश महाराज जैसे सहिष्णु होना आवश्यक है तो सहिष्णु बने, क्योंकि न तो हम सहनशीलता के पीछे हैं न प्रतिकारिता के पीछे, हम हैं भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के पीछे। तो जो येन केन प्रकारेण भगवान को प्रसन्न करे वो करना है। और कोई प्रश्न?
आपने कहा कि जो वृक्ष जो है वो जमीन में पानी ढूंढता है और अंत में उसको फल लगता है, तो ये हमारे साधना भक्ति की सबसे बड़ी चीज है। तो हम साधना भक्ति में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है हमें, तो फल तो बहुत दूर की बात है कृष्ण पे, तो उसमें हम संघर्ष करते करते,
इसलिए रूप गोस्वामी कहे है ना उत्साह। उत्साह का अर्थ है कि हम उत्साह से संघर्ष करते रहें और फिर निश्चय से संघर्ष करें कि ये संघर्ष से वो फल आएगा, एक न एक दिन आएगा, और फिर धैर्यता से संघर्ष करें। तो संघर्ष ये तीन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए करना है, उत्साह से, निश्चय से और धैर्यता से। कि जैसे आप पूछिए जो अंगूर की खेती करते हैं कितने उत्साह से अंगूर की खेती करनी पड़ती है, यदि कोई उत्साह नहीं तो फिर, और उसके साथ साथ निश्चय कि हाँ ये मौसम जो है कौन सा जनवरी फरवरी का मौसम, इस मौसम में अंगूर आएंगे। बाकी पूरे साल भर जाके आप देखो समझ में नहीं, अभी भी समझ में नहीं आएगा कि उसमें अंगूर उग रहे हैं। तो बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ता है, और वो विश्वास, वो निश्चय और उस धैर्य के साथ कि हाँ मौसम जब आता है अंगूर का तो उसमें अंगूर उगते हैं। तो ऐसा नहीं कि मौसम आएगा तो अपने आप उग जाएंगे, नहीं, वो साल भर उनको परिश्रम करना पड़ता है ताकि वो मौसम अंगूर के मौसम में अंगूर आए। तो वैसे ही भगवान फल तो देंगे परंतु साल भर परिश्रम करना होगा या उम्र भर परिश्रम करना होगा और फिर वो फल आएंगे और फिर वो फल को अर्पित कर देना है। ऐसा नहीं कि अब बोले कि इतना साधना भक्ति मैंने किया, इतना माला, इतना फल आया तो फिर वो भी आपको। तो भगवान कहेंगे क्या लेक्चर में कौन सा श्लोक बोले थे, पत्रम पुष्पम फलम, और वो किसके लिए बोले थे। तो ये तीन चीज ध्यान में रखनी है, उत्साह, निश्चय और धैर्य। और ये देखना है कि इतने सारे भक्तों के जीवन में कठोर परिश्रम के पश्चात फल मिला। परीक्षित महाराज, पांडव इतना कठोर परिश्रम किए अंततः फल मिला, भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य, उनकी भक्ति, भगवत धाम मिला। प्रहलाद महाराज ने कठोर परिश्रम किया, ध्रुव महाराज ने किया, फल मिला। तो इतने सारे उदाहरण हैं हमारे सामने जिन्होंने कठोर परिश्रम किया और उन्हें फल मिला है। तो फिर हम यदि उनके पदचिन्हों में चलते रहें तो क्यों नहीं मिलेगा, ये प्रश्न पूछ लें, क्यों नहीं। प्रभुपाद को यह प्रश्न पूछा गया था, वाई 16 राउंड्स, प्रभुपाद ने पूछा वाई ओनली 16 राउंड्स। तो उस प्रकार से हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं, क्यों नहीं फल मिलेगा। यदि ठीक से पानी डालोगे, यदि ठीक से सिंचन करोगे तो फल मिलेगा, अवश्य ही आएगा। परंतु यदि और कहीं पर पानी डाल रहे हैं और कहीं सिंचन हो रहा है या फिर गलत भूमि में उसे डाला है, उपजाऊ भूमि में नहीं डाला, तो अर्थ क्या है कि जो श्रवण कीर्तन है वो उस जल के समान है और जो उपजाऊ भूमि है वो अनुकूल भक्त समूह भक्त का संग है उसके समान है। तो यदि ये सब कुछ ठीक रहेगा तो अवश्य ही फल आएगा। उत्साह, निश्चय, धैर्य, जैसे हम इतने उत्साह से, इतने निश्चय और धैर्य से बैठे हुए हैं कि प्रसाद मिलेगा, है ना, सबको विश्वास है ना, और सब लोग ने देख लिया, जानकीनाथ प्रभु आकर बैठ गए, अर्थात प्रसाद आ गया। तो चिंता मत कीजिए, देवदर्शन प्रभु ने इशारा भी कर दिया तो फल मिलेगा। प्रश्न, प्रसादम का सर्विंग कैसे करना है? भगवान ने बताया गीता में, ये श्लोक भगवान ने बोला, दैवी येष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता अंतरंतिते। इस श्लोक में भगवान पहले दो लाइन में कह रहे हैं कि ये दुरत्यया माया कितनी दुष्कर है। तो राधा गोपीनाथ प्रभु कह रहे थे कि यदि पहले दो जो वाक्य हैं, लाइन जो है, यदि उसी पर हम गौर करते रहें तो हम डिप्रेशन में चले जाएं, दुरत्यया माया दुरत्यया, और दैवी और भगवान की ये, तो हम डिप्रेशन में चले जाएं। परंतु उसके साथ साथ भगवान हमारा कॉन्फिडेंस, विश्वास भी पैदा कर रहे हैं बाकी के दो लाइन बोलकर कि हाँ, ये दुरत्यया होगी माया मेरी, परंतु मेरी शरण में जो आता है मैं स्वयं पार कराता हूं। इसलिए हमें इस भौतिक संसार में भक्ति करते हुए ये दोनों मुद्दों को बराबर, इसका तालमेल रखना चाहिए, बैलेंस बराबर होना चाहिए। इसे अंग्रेजी में हम इस प्रकार से कहेंगे, अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ माया एंड ऑल्सो द पावर ऑफ कृष्णा, नॉट अंडर एस्टिमेटिंग द पावर ऑफ माया एंड नॉट अंडर एस्टिमेटिंग द पावर ऑफ कृष्णा। अगर इन दोनों में से हम किसी एक को साधारण तरह ले लेते हैं, सहज तरीके से ले लेते हैं, तो तकलीफ शुरू, माया को और भगवान दोनों। इसलिए वो चंद्रमौली महाराज अच्छा वाक्य बोले अपने भागवत क्लास के बाद, कॉन्शियस ऑफ कृष्णा, कॉशियस ऑफ माया, इसको ध्यान में रखना, कॉन्शियस ऑफ कृष्णा, कॉशियस ऑफ माया। कई बार उल्टा हो जाता है, कॉन्शियस ऑफ माया, कॉशियस ऑफ कृष्णा, थोड़े दूर से भक्ति करना, उल्टा समझे, वापस से बोलता हूं ये तो अंतिम सुनते हुए फिर गलत हो जाएगा, कॉन्शियस ऑफ कृष्णा, कॉशियस ऑफ माया, ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है।